लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया संत पाप फ्रांसिस का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने विश्वासियों का आह्वान किया है कि वे अपनी रचनात्मकता, बुद्धिमानी और यहां तक कि चतुराई को भी अपने दैनिक जीवन में सुसमाचार को जीने के लिए प्रयोग करें तथा इस दुनिया की चीजों का प्रयोग करने में उदार बनें। उन लोगों के प्रति भाईचारापूर्ण प्रेम और सामाजिक मित्रता दिखलाएं जो जरूरतमंद हैं। वैटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 18 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया, जिसके पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
कारी फ्रातेल्ली ए सोरेल्ले, बोंजोर्नो।
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात।
ला पाराबोला के इल वांजेलो देला लिटुर्जिया ओडियर्ना ची प्रेसेंटा ची अपारे उन पो डिफिचिले दा कॉम्प्रेंडेरे। Gesù racconta una storia di corruzione, un amministratore disonesto che ruba e poi, scoperto dal suo padrone, agisce con furbizia per venire fuori da quella situazione.
आज की धर्मविधि के सुसमाचार पाठ में दृष्टांत हमारे समझने के लिए थोड़ा कठिन प्रतीत होता है। यीशु भ्रष्टाचार की कहानी बतलाते हैं। एक बेईमान करिंदा चोरी करता और जब वह अपने स्वामी से पकड़ा जाता है तो इस परिस्थिति से ऊपर उठने के लिए बुद्धिमानी से काम लेता है। संत पापा ने कहा, हम अपने आप से पूछें, यह किस प्रकार की बुद्धिमानी है और यीशु हमें क्या बतलाना चाहते हैं? इस कहानी में हम देखते हैं कि करिंदा किस प्रकार परेशानी में पड़ जाता है क्योंकि उसने अपने स्वामी की अच्छाई का फायदा उठाया। अब उसे हिसाब देना होगा और वह अपनी नौकरी खो देगा, लेकिन वह निराश नहीं होता है। वह अपने आप को अपने भाग्य पर नहीं छोड़ता और न ही पीड़ित महसूस करता है। इसके विपरीत वह तत्काल बुद्धिमानी से काम लेता है। वह एक समाधान खोजता और रचनात्मक बनता है। संत पापा ने कहा, यीशु इस कहानी को हमारे सामने एक प्रेरणा के रूप में रखते हुए कहते हैं, इस संसार की संतान आपसी लेन देन में ज्योति की संतान से अधिक चतुर है। अक्सर ऐसा होता है कि जो लोग अंधकार में चलते वे दुनिया के स्तर पर कुछ हद तक अधिक जानते हैं कि कठिनाई के समय में क्या करना है। वे दूसरों से अधिक चतुर होते
हैं।
जबकि यीशु के शिष्य अर्थात हम निंद्रा में रहते या अनाड़ी होते और नहीं जानते कि कठिनाई के समय में कैसे रास्ता निकाला जाए। संत पापा ने कहा, मैं व्यक्तिगत एवं सामाजिक संकट बल्कि कलीसिया संकट के बारे में सोच रहा हूँ। कई बार हम निराश हो जाते हैं या शिकायत करने लगते और पीड़ित महसूस करते हैं, किंतु यीशु कहते हैं कि हम भी सुसमाचार के अनुसार चतुर हो सकते हैं, उस वास्तविकता के लिए सचेत एवं जागरूक हो सकते हैं तथा अपने एवं दूसरों के लिए सही समाधान पाने हेतु रचनात्मक बन सकते हैं। संत पापा ने यीशु की दूसरी शिक्षा पर ध्यान देते हुए कहा, लेकिन एक दूसरी शिक्षा है जिसको यीशु हमें देते हैं। करिंदा की चतुराई क्या थी? उसने उन लोगों को छूट देने का निश्चय किया जिन्होंने उधार लिया था। इस तरह वे उसके मित्र बन गए। उसने इस आशय से ऐसा किया कि जब उसका स्वामी उसे काम से निकाल देगा तो वे उसकी मदद करेंगे। पहले वह अपने लिए धन जमा करता था, किंतु अब इसका प्रयोग वह मित्र बनाने में करता है जो उसे भविष्य में मदद दे सकते हैं। संत पापा ने कहा, यीशु शिक्षा देते हैं कि हम भौतिक चीजों का प्रयोग किस तरह करें और मैं तुम लोगों से कहता हूँ, झूठे धन से अपने लिए मित्र बना लो, जिससे उसके समाप्त हो जाने पर वे लोग परलोक में तुम्हारा स्वागत करें। इस प्रकार अनंत जीवन पाने के लिए इस दुनिया में धन जमा करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि महत्वपूर्ण है हमारे भाईचारापूर्ण संबंध को उदारता पूर्वक जिया जाए। यीशु हमसे यही मांगते हैं कि हम इस संसार की वस्तुओं को सिर्फ अपने लिए और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए प्रयोग न करें, लेकिन मित्र बनाने, अच्छे संबंध बनाने, उदारता का कार्य करने, भाईचारा को बढ़ावा देने और सबसे कमजोर लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए करें। संत पाप ने आधुनिक विश्व की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, भाइयों एवं बहनों, आज भी दुनिया में भ्रष्टाचार निहित है, जैसा कि सुसमाचार में बतलाया गया है। बेईमान आचरण, अनुचित नीतियाँ, स्वार्थ आदि अब भी हैं, जो व्यक्तियों एवं संस्थानों की पसंद पर हावी हैं, और कई अन्य अस्पष्ट स्थितियाँ हैं। किंतु हम क्रिश्चियन निराश होने अथवा बदतर बनने, चीजों को जाने देने और उनके प्रति उदासीन बने रहने के लिए नहीं बुलाए जाते। इसके विपरीत हम बुद्धिमानी और सुसमाचार की चतुराई के साथ अच्छा करने के लिए बुलाए जाते हैं। इस दुनिया की अच्छाई का प्रयोग करने, न केवल भौतिक बल्कि उन सभी दानों को जिन्हें हमने प्रभु से प्राप्त किया है। हमें अपने आप को समृद्ध नहीं करना है, बल्कि भाईचारापूर्ण प्रेम और सामाजिक मित्रता उत्पन्न करना है। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम धन्य कुमारी मरियम से प्रार्थना करें, ताकि वे हमें उनके समान दीन मनोभाव धारण करने और आपसी प्रेम में समृद्ध होने में मदद दें। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरित आशीर्वाद दिया।
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei,
benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
रविवार को देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा फ्रांसिस ने अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच तनाव के शिकार लोगों के लिए प्रार्थना की, साथ ही संवाद एवं शांति की अपील की।
E continuiamo a pregare per il martoriato popolo ucraino e per la pace in ogni terra insanguinata dalla guerra.
उन्होंने सभी लोगों से आग्रह किया कि वे यूक्रेन एवं विश्व के उन सभी क्षेत्रों के लिए प्रार्थना जारी रखें जहां युद्ध जारी है। संत पापा फ्रांसिस ने रविवार को उन परिवारों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया जो अजरबैजान और अर्मेनिया के बीच हाल में हुए तनाव के शिकार हो गए हैं। उन्होंने दोनों पक्षों से आग्रह किया कि शांति समझौता के मद्देनजर युद्ध विराम का सम्मान करें। रविवार को देवदूत प्रार्थना के लिए संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में एकत्रित विश्वासियों को संबोधित करते हुए संत पापा ने कहा कि शांति संभव है यदि हथियार शांत हो और वार्ता शुरू किया जाए। हम यूक्रेन के पीड़ित लोगों तथा युद्ध से रंजित भूमियों में शांति के लिए प्रार्थना करते रहें। तब संत पापा ने इटली के मार्के प्रांत का जिक्र किया जो पिछले दिनों की भारी वर्षा और बाढ़ से प्रभावित है। उन्होंने वहां मरने वाले लोगों, घायलों और उनके परिवार वालों के लिए प्रार्थना की तथा गौर किया कि वहां घरों, सड़कों और संरचनाओं के ध्वस्त होने के कारण भी लोग परेशान हैं। उन्होंने प्रार्थना की कि प्रभु वहां रहने वाले समुदायों को शक्ति प्रदान करे। तत्पश्चात संत पापा ने कजाकिस्तान में अपनी पिछली प्रेरित यात्रा की याद की जहां उन्होंने विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं के सातवें सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने जानकारी दी कि वे इस पर बुधवार को आम दर्शन समारोह में चर्चा करेंगे। और अंत में संत पापा ने अपने लिए प्रार्थना का आग्रह करते हुए सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
Auguro a tutti una buona domenica. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Thank you. मोहब्बत के दम पे क्या दिल जीत सकते हैं, हो दौलत के दम पे क्या दिल जीत सकते हैं। बंदूक की नोक से क्या सच्चाई दफना सकते हैं, हो दौलत के दम पे क्या दिल जीत सकते हैं, हो दौलत के दम पे क्या दिल जीत सकते हैं। सुनो अर्पण का अर्थ समझो, आत्मा की आवाज सुनो, सेवा की शान जानो, प्यार से प्रेरणा पालो, प्यार से प्रेरणा पालो, दौलत के दम पे क्या।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं, लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व में हो रहे वर्तमान दुखद युद्धों और प्राकृतिक आपदा के मद्देनजर 4 ट्वीट कर सभी लोगों से पीड़ितों के लिए प्रार्थना करने और शांति हेतु काम करने के लिए प्रेरित किया। पहले ट्वीट में संत पापा ने सुसमाचार के चालाक कारिंदा की तरह वर्तमान परिस्थिति में चौकस रहते हुए खुद के लिए और दूसरों के लिए फायदेमंद समाधान खोजने हेतु प्रेरित किया। संदेश में संत पापा ने लिखा, संकट के समय हम कभी कभी खुद में निराशा को हावी होने देते हैं या शिकायत करना शुरू कर देते हैं। इसके बजाय आज के सुसमाचार में येसु हमें सुसमाचार का पालन करने में चतुर, समझदार, वास्तविकता में चौकस रहते हुए खुद के लिए और दूसरों के लिए अच्छे समाधान खोजने के लिए रचनात्मक बनने के लिए कहा। हाल के दिनों में इटली के मार्के प्रांत में भयंकर वर्षा और बाढ़ के कारण पूरे क्षेत्र में जान माल की हानि हुई। संत पापा ने उन लोगों के प्रति अपनी आध्यात्मिक सामीप्य प्रकट की। संदेश में उन्होंने लिखा, मैं हिंसक बाढ़ से प्रभावित मार्के के लोगों के लिए अपनी प्रार्थनाओं का आश्वासन देना चाहता हूं। मैं मृतकों और उनके परिवार के लिए, घायलों के लिए और गंभीर क्षति झेलने वालों के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु वहां रहने वाले समुदाय को शक्ति दें। संत पापा ने अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हुई लड़ाई में मारे गए लोगों और उनके परिवारों के प्रति अपनी आध्यात्मिक समीपता प्रकट की। शांति समझौते का सम्मान करने हेतु आग्रह किया। संत पापा ने ट्वीट संदेश में लिखा, मैं अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच हाल में हुई लड़ाई से बहुत दुखी हूँ। मैं पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी आध्यात्मिक निकटता व्यक्त करता हूँ और मैं पार्टियों से शांति समझौते के मद्देनजर संघर्ष विराम का सम्मान करने का आग्रह करता हूँ। संत पापा ने यूक्रेन के पीड़ितों के लिए प्रार्थना जारी रखने हेतु सभी लोगों से अपील करते हुए यूक्रेन में शांति स्थापना हेतु संवाद शुरू करने का आह्वान किया। साथ ही सभी युद्धरत देशों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने ट्वीट में लिखा, यह न भूले कि शांति तभी संभव है जब शस्त्रों को खामोश कर दिया जाए और संवाद शुरू हो जाए। आइए हम यूक्रेन के पीड़ित लोगों और युद्ध के रक्त रंजित हर देश के शांति के लिए प्रार्थना करना जारी रखें। 19 सितंबर के ट्वीट संदेश में संत पापा फ्रांसिस ने प्रार्थना की महत्ता पर जोर देते हुए सभी से अपने विश्वास को बनाए रखने हेतु प्रार्थना जारी रखने के लिए प्रेरित किया। ट्वीट संदेश में संत पापा ने लिखा, जब तक प्रार्थना का तेल है तब तक धरती पर विश्वास का दीपक हमेशा जलता रहेगा। नियोपोलिटन अखबार की 130वीं वर्षगांठ के लिए रविवार को इल मत्तीनो द्वारा प्रकाशित एक साक्षात्कार में संत पापा फ्रांसिस ने युद्ध से लेकर इतालवी दक्षिण की कठिनाइयों व दुनिया की कठिनाइयों तक राजनीति के सर्वोच्च दान के रूप में संगठित अपराध, पर्यावरण की तबाही, इटली के मार के क्षेत्र में बाढ़ के विशेष संदर्भ के साथ एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित किया। संत पापा फ्रांसिस ने एक बार फिर जनहित के लिए मिलकर काम करके युद्ध, महामारी और गरीबी की चल रही समस्याओं को दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया। यद्यपि साक्षात्कार विशेष रूप से नेपल्स और दक्षिणी इटली के सामने आने वाले मुद्दों पर केंद्रित था, संत पापा फ्रांसिस ने यह स्पष्ट किया कि वे जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वे वैश्विक मुद्दे हैं, ऐसे प्रश्न जो पूरी दुनिया के भविष्य से संबंधित है। संत पापा फ्रांसिस ने पाठ्यक्रम बदलने की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि ऐसा करना हम सभी के सामने चुनौती है। आज परीक्षण का समय है, चुनाव का समय है या पाठ्यक्रम को फिर से स्थापित करने का समय है। विशेष रूप से उन्होंने सतत और अभिन्न विकास एवं अर्थव्यवस्था की प्रगति को समझने के नए तरीकों की आवश्यकता की ओर इशारा किया। विकासशील देशों के लिए ऋण राहत का और पृथ्वी के शोषण, हथियारों की दौड़ को समाप्त करने की आवश्यकता और लोगों, विशेषकर बच्चों के शोषण को समाप्त करने की आवश्यकता है। संत पापा ने कहा कि इन संकटों का जवाब देने के लिए और जनहित के लिए निर्देशित रचनात्मकता आवश्यक है। हम जिस मार्ग को चुनते हैं वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, सच्ची शांति के स्तंभ न्याय और क्षमा है, जो प्रेम का एक विशेष रूप है। हर चीज का एक समय होता है। क्षमा से पहले बुराई की निंदा आती है। हालांकि युद्ध की खेती नहीं करना बल्कि शांति तैयार करना, शांति बोना आवश्यक है। उधर वेस्टमिंस्टर हॉल में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के अंतिम दिन उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के हजारों लोग रविवार को पूरे लंदन में कतार में लगे रहे। महारानी का राजकीय अंतिम संस्कार आज सोमवार को किया जा रहा है और समारोह में भाग लेने के लिए 500 से अधिक विश्व नेता और विदेशी गणमान्य व्यक्ति ब्रिटिश राजधानी पहुंचे। महारानी के अंतिम संस्कार में संत पापा फ्रांसिस का प्रतिनिधित्व वाटिकन विदेश सचिव ब्रिटिश महाधर्माध्यक्ष पॉल गल्लाघर कर रहे हैं। वेस्टमिंस्टर के हॉल में रखे गए रानी के ताबूत को देखने के लिए 8 किलोमीटर से भी लंबी कतारों में लगभग 24 घंटों से लोग धैर्यपूर्वक खड़े दिखाई पड़े। वे न केवल ब्रिटेन के थे बल्कि दुनिया भर के अन्य देशों के लोग भी शामिल थे। शनिवार की शाम को शोक मनाने वालों की कतार में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के सभी 8 पोते 15 मिनट तक अपने ताबूत के पास मौन खड़े रहे। शुक्रवार को महारानी एलिजाबेथ के 4 बच्चे चार्ल्स, जो अब नए सम्राट, एनी, एंड्रू और एडवर्ड ताबूत के पास खड़े थे। लगभग 500 विश्व नेता और विदेशी गणमान्य व्यक्ति सोमवार को वेस्टमिंस्टर एब्बे में रानी के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। इनमें फ्रांस, इटली, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान के राष्ट्राध्यक्ष और कई यूरोपीय देशों के शाही परिवारों के सदस्य शामिल हैं। भारत की ओर से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की अंत्येष्टि में शामिल होंगी। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।